पता है ये सब बातें गैब की बातें हैं, हमें ना हम थे ना हम हमारी कोई साइंस या कोई कोई एस्ट्रोनॉमी कोई फलां कोई चीज हमें इस बारे में इल्म दे ही नहीं सकती। यहाँ पे इंसान का इल्म खत्म है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, इस जगह पर सिर्फ और सिर्फ जो अल्लाह ने वही के जरिए इल्म दिया है, सिर्फ हमें उसके ऊपर ही ईमान रखना है, उसको मानना है, क्योंकि वही सच बात है। तो देखते हैं हम यहाँ पे, वअल्लम आदम अस्मा कुल्लहा, और सिखा दिए आदम अलैहिस्सलाम को नाम सारे के सारे। अब जब अल्लाह ताला ने फैसला फरमा दिया तो फ़ालुल लिमा युरीद, वो जो चाहे करे। आप देखें अल्लाह का जो फैसला है, आगे से फरिश्तों ने, याद रखें, एतराज नहीं किया था, बल्कि फरिश्तों के तो एक कंफ्यूजन थी कि ये कैसी मखलूक होगी, ये तो बड़ा खून बहाएगी, ये ऐसे करेगी, क्योंकि अल्लाह ताला ने बता दिया था कि खलीफा है, और खलीफा का आपको पता है ना, वो वाला खलीफा तो नहीं है जो दुनिया में खुलफाए राशिदीन या जैसे खलीफा हम कहते हैं खिलाफत बात करते हैं, वैसे तो नहीं, लेकिन खलीफा जो होता है बा इख्तियार होता है ना, उसके पास चॉइस होती है, उसके पास पावर होती है, पावरफुल आदमी होता है ना। तो यहाँ पे इस लफ्ज से ही फरिश्ते समझ गए थे कि इसके पास इख्तियार होगा, पावर होगी, तो ये करेगा क्या, ये उन्होंने सोचा। तो जब अल्लाह ताला ने फिर आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया, और आदम अलैहिस्सलाम को कहा जाता है कि उनको जो पैदा किया तो उनकी मट्टी डिफरेंट जगहों से ली गई दुनिया में, यानी डिफरेंट दुनिया के खित्तों से उनकी मट्टी ली गई और उनसे आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया, ताकि उनकी औलाद में हर तरह की खूबियों को, देखिए कोई मट्टी नरम होती है, कोई सख्त होती है, कोई स्याह होती है, कोई कैसी होती है, तो मट्टियों की भी किस्में हैं ना, तो इंसानों में भी कोई नरम होगा, कोई सख्त होगा, कोई अच्छी तबीयत का होगा, कोई कैसी तबीयत का होगा, कोई गोरा होगा, कोई काला होगा, कोई दरमियान में होगा, ठीक है। और जब अल्लाह ताला ने ये फरमाया ना कि मैं जमीन में खलीफा बनाने वाला हूं, तो एक और बात भी आती है, दामा बगवी लिखते हैं अपनी तफसीर में कि फरिश्तों ने आपस में चर्चा किया कि अल्लाह ताला जो चाहे पैदा करे, लेकिन जिसको भी पैदा करेगा वो हमसे ज्यादा बढ़ के कोई बुजुर्ग मखलूक नहीं हो सकती, और अगर हमसे ज्यादा बुजुर्गी वाली कोई मखलूक हो भी गई तो इल्म में हमसे ज्यादा फिर भी नहीं होगी, क्योंकि हम उनसे पहले के पैदा हुए होंगे और हुए में, और हम तो बड़ा कुछ हमने देखा है, तो ऐसी तो कोई मखलूक हो ही नहीं सकती। अच्छा, अब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमा दी। कौन सा दिन था जिस दिन आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे? जुमा का दिन, बेहतरीन दिन हदीस में आता है, जुमे का दिन है। इसी दिन अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, इसी दिन अल्लाह ताला ने उनको जन्नत में दाखिल फरमाया और इसी दिन उनको जन्नत से निकाला। तो आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने नाम सिखा दिए। कैसे सिखाए होंगे अल्लाह ने आदम को नाम? ये भी हो सकता है कि चीजों को उनके सामने जाहिर किया हो और उनको उनका नाम बताया हो। अच्छा, नाम बताने से हम सोचते हैं ये कौन सी ऐसी बड़ी बात है, किसी चीज का कोई भी नाम हो तो इससे क्या फर्क पड़ता है, बात ये नहीं है। बात ये, यानी नाम से मतलब है कि उसमें उसकी सारी प्रॉपर्टीज जो है वो भी बता दी। फॉर एग्जाम्पल, ये पानी है, पानी जो है वो ऐसी चीज होती है, यानी लिक्विड चीज होती है, इससे प्यास बुझती है, ये काम करता है, इसमें ये खसूसियात है, ये सब चीजें। और फिर फरमाया अस्मा कुल्लहा, सबके सब, इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया का हर इल्म और हर चीज और आसमानों और सितारों और जो दुनिया के जितने काम होने वाले हैं और होने नहीं वाले, उस सब बता दें उनको, ऐसा नहीं। उल्लाह से मतलब सबके सब, जैसे मैंने हम कहे मैंने सब काम कर लिए, सब का मतलब क्या दुनिया के सारे काम कर लिए? नहीं, जो रिलेटेड है उनसे, यानी हर चीज की एक वैरायटी उनको जो उसकी थी ना, मतलब जो भी चीजें थी उनकी एक बेसिक चीज, बेसिक नॉलेज उनको दे दिया गया जो उनसे मुतालिक थी। तो हर वैरायटी की चीजों के बारे में बता दिया गया और क्या क्या सिखा दिया गया। आता है तफासीर में कि उनकी तमाम औलाद के बारे में उनको बता दिया गया, आपके ये बच्चे हैं, आपकी ये जुर्रियत आपकी आनी है, सबके नाम बता दिए गए, ये ऐसे ऐसे होंगे, ये ऐसे होंगे, फिर जानवरों के, फिर जमीन आसमान पहाड़ तरी खुश्की घोड़ा गधा बर्तन चरिंद परिंद सितारों का फरिश्तों का, तो ऐसी छोटी बड़ी सारी चीजों के नाम उनको मालूम करा दिए गए। और ये यहां पे अच्छा आगे आता है तो मैं आपको बताती हूँ, फिर एक एक लफ्ज को लेकर चलते हैं। थुम्मा फिर क्या किया गया, अब आदम अलैहि सलाम के अल्लाह ताला ने सबसे पहला ऑनर, पहला अगर आपसे पूछा जाए पहला ऑनर आदम अलैहि सलाम को अल्लाह ताला ने क्या दिया था, तो ये नहीं है पहला ऑनर कि फरिश्तों ने उनको सजदा किया, पहला ऑनर अल्लाह ने उनको क्या दिया कि अल्लाह ने उनको इल्म दिया। इससे इल्म की फजीलत पता चलती है, और इल्म क्या होता है, किसी चीज की हकीकत को जानना। तो इल्म क्या अल्लाह ने सिर्फ उनको दीन का दिया था? नहीं, तमाम उलूम सिखा दिए थे ना, जो नफामंद उलूम है वो सिखा दिए। तो एक मुसलमान के लिए भी उसको चाहिए कि जो भी नफामंद इल्म है वो हासिल करे। दीन का इल्म तो बेस है, वो तो बेसिक चीज है, वो तो करना ही करना है, लेकिन हमारा दीन हमें ये नहीं कहता कि इसके अलावा आपने कोई इल्म हासिल ही नहीं करना, वो सब दुनिया की चीजें हैं, दुनिया को छोड़ दो, दुनिया में नहीं पढ़ो, ना साइंस पढ़ सकते हो, ना मैथ पढ़ सकते हो, ना कोई और चीज पढ़ सकते हो, बस आपने आप दुनिया के पीछे लग गए। नहीं, ये बात नहीं है, ये उलूम भी अल्लाह ताला ने ही वदियत किए हैं। देखिए, जो आदम अलैहि सलाम को इल्म दिया था ना, उसी से ये आगे समझ लें कि यानी एक समझ लें बीज था वो, ठीक है, उसी से आगे ये इल्म स्प्रेड हुए, क्योंकि वो बीज आदम अलैहि सलाम के अंदर डाल दिया गया था, उसी से आज इंसान फिर ये इन्वेंशन करता है, कोई कोई चीज निकाल रहा है, कोई कोई चीज बना रहा है, वो उस इल्म की, जो उस इल्म की बदौलत है जो आदम अलैहि सलाम में डाला गया था। तो उनको सब साइंस के, ये इसके उलूम उनके अंदर, और क्या कहा जाता है, जुबाने तक भी उनको बता दी गई थी सारी। तो ये बीज इन सारे उलूम का, इन सब सब्जेक्ट्स का डाला हुआ था आदम अलैहि सलाम ने, तभी इंसान आगे आगे एक्सप्लोर करता है, और फिर वो ही उलूम है जो आगे फिर बढ़ते हैं। तो इसमें फिर कोई हर्ज नहीं है कि अगर इंसान दीगर उलूम भी, जो नफामंद उलूम है, वो हासिल करे, ठीक है, जो उसकी जिंदगी गुजारने के लिए जरूरी है, वो उलूम को इंसानों ने नहीं पैदा किए हुए, वो उलूम भी अल्लाह की तरफ से है, ठीक है। अब अल्लाह ताला ने मिसाल के तौर पे उनको सिखाए चरिंद परिंद के इल्म है, इंसानों का इल्म है, पहाड़ों का, खुशकी का, आज यही उलूम है जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, आप देखें यही है, जो जूलॉजी है, कहीं बॉटनी है, कहीं मैथ है, कहीं अकाउंटिंग है, कहीं ये है, ये सब चीजें हैं ना इसके अंदर, कहीं सितारों का इल्म उनको दिया, तो आज इंसान कहाँ तक, क्या क्या टेलीस्कोप से इजाद किए हैं, और कहाँ तक देख रहा है, और कायनात में और चीजें एक्सप्लोर कर रहा है, तो ये उलूम अल्लाह ने सिखाए थे। तो इनको ये कह के नहीं हकीर कर देना चाहिए कि नो ये तो दुनिया का इल्म है, तुम तो दुनिया में पढ़ गए, नहीं, इनसे भी अल्लाह को पहचानो, और ये सोचो कि ये अल्लाह ने ही उलूम दिए। तो अच्छा, ये हमें बात पता चल गई, आगे देखते हैं। सुम्मा फिर आरादाहुम आलल मलाइकती, फिर पेश किया उनको, किन को, आदम अलैहि सलाम को, या उन चीजों को, पेश नहीं, हुम का मतलब नहीं, ये नहीं लिखे आदम अलैहि सलाम, उन चीजों को जिन चीजों का भी इल्म दिया था, आलल मलाइका थी, मलाइका पर, यानी मलाइका के सामने वो सारी चीजें पेश की, मसलन है कि जो इंसानों की रूहें थी, या वो अच्छा ये भी एक बड़ी मजे की बात आती है कि आदम अलैहि सलाम की पुश्त से अल्लाह ताला ने रूहें निकाली ना, जितनी भी हम सारे जो कयामत तक जितने इंसान आने हैं उन सब की रूहें निकाली, और आदम अलैह सलाम देखा उन्होंने तो हैरान हो गए, उनको क्या पता कि ये क्या चीजें हैं, पूछा या अल्लाह ये कौन है, तो उनको बताया गया ये आपकी जुर्रियत है। अब आदम अलैह सलाम ने देखा तो सबके चेहरे जो थे ना, आंखों के दरमियान उनके एक नूर था, नूर था, सबके चेहरे रोशन थे। तो आदम अलैह सलाम ने सब पे जब नजर डाली तो एक बहुत रोशन पेशानी वाले थे, जो आदम अलैहि सलाम को बड़े पसंद आए अपनी औलाद में से। आप सोचें कि हम सब भी वहीं खड़े होंगे ना, रूहों की शक्ल में, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया, हदीस आ गई, तो फिर हम भी ईमान रखते हैं कि हाँ ऐसा ही हुआ। तो पूछा कि या रब ये कौन है? फरमाया ये आपकी जुर्रियत में दाऊद है, दाऊद अलैहि सलाम। तो उनको इतने अच्छे लगे, पूछा या अल्लाह इनकी उम्र कितनी है? बताया कि इनकी उम्र 60 साल है। तो फरमाया या अल्लाह मेरी उम्र में से 40 साल इनको दे दे। तो फिर 40 साल दाऊद अलैहि सलाम को दे दिए। जब आदम अलैहि सलाम की वफात का वक्त आया, तो फरिश्ता जब आया तो आदम अलैहि सलाम ने कहा अभी तो मेरे 40 साल और रहते हैं। तो उनसे कहा गया नहीं, आपने तो अपने बेटे दाऊद को दे दिए वे। तो आदम अलैहि सलाम भूल गए थे। इंसान भूलता है, आदम भूले, उनकी औलाद भी भूलती है, किसी को दे के भी भूल जाते हैं कि हमने तो ये चीज दे दी भी है किसी को। तो फिर ये सब जो है, ये रूहें या ये सब चीजें जो थी, ये उनके सामने भी पेश की गई, फरिश्तों के सामने। और अल्लाह ताला ने उनको क्या फरमाया? फकाला, फिर फरमाया अम्बिउनी, मुझे बताओ भी अस्माई हाउलाई, नाम इन सब के, इन सब के नाम तो मुझे बताओ जो तुम कह रहे थे तुम लोगों को बड़ा इल्म है या ये, तो तुम इनके नाम बताओ। इन कुंतुम सौदिकीन, अगर हो तुम सच्चे, सच्चे किस बात में सच्चे हो कि ये तो बस खून बहाएगा, फसाद करेगा, ये करेगा, और यानी इसमें तो कोई खैर खूबी है ही नहीं है। तो अगर तुम सच्चे हो, यानी तुम अपनी, तुम इस बात में सच्चे हो, किस बात में कि सारी मखलूक से ज्यादा इल्म वाले हो, या इस बात में सच्चे हो कि अल्लाह ताला को जमीन में खलीफा बनाने की क्या जरूरत है, हम जो हैं इबादत करने के लिए, और या ये खून बहाएगा, फसाद करेगा। तो जो भी उनकी बातें थी, जो उनकी सोच थी, उसको सामने रखते हुए अल्लाह ताला ने फरमाया कि बताओ फिर इनके नाम बताओ ना, अगर तुम सच्चे हो, तुम ये जो समझते थे तुम्हारी बात सच है तो बताओ, अब चीजें तुम्हारे सामने हैं। ठीक है, कालू, उन्होंने कहा। अब फरिश्ते तो ये नहीं जानते थे इन चीजों के बारे में कि ये क्या चीजें हैं, और फरिश्तों को तो सिर्फ तस्बीह करनी आती है, तकदीस बयान करनी आती है, इल्म वगैरह ऐसी चीजें तो, और इन चीजों का इल्म तो उनके पास नहीं था। ठीक है, तो इल्म की तो बहुत बड़ी फजीलत है, और ये उलूम फरिश्ते इनसे वाकिफ ही नहीं थे। फरमाया फरिश्तों ने सुबहाना का, पाक है तू, ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना, नहीं कोई इल्म हमारे लिए, यानी हमारे पास कोई इल्म नहीं, इल्ला मा अल्लमतना, मगर जो सिखा दिया तूने, इन्नका अंतल अलीमुल हकीम, बेशक तू तू इल्म वाला है और हिकमत वाला है। अब फरिश्तों ने इतना प्यारा जवाब दिया, इस जो सवाल उनसे किया गया, इसके जवाब में उन्होंने इतनी खूबसूरत बात की। सबसे पहली बात उन्होंने क्या की? अल्लाह की पाकी बयान की। जैसे हम कहते हैं सुबहान अल्लाह, तो अल्लाह वहां पे, अल्लाह ताला को वो वहां पे कह रहे हैं सुबहाना का, सुबहान अल्लाह और सुबहाना का एक ही बात है, पाकी बयान की। दूसरे उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी जहालत का इतराफ किया कि हम जाहिल, हमें नहीं पता, हमें कोई इल्म नहीं है। तीसरी क्या चीज उन्होंने की? सारे इल्म और हिकमत तेरे पास है। तो कितनी आजजी उन्होंने दिखाई। उन्होंने ये नहीं किया जैसे हम इंसानों में, कोई हमसे सवाल करता है ना, तो हमें ना आता तो हम क्या करते हैं? तुक्के मारने शुरू हो जाते हैं, अच्छा मेरे ये होगा, ये होगा। अच्छा वो भी तो कोई तुक्के मार सकते थे, कुछ भी बोल देते, कुछ कह ही देते, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता, जो चीज का नहीं पता इंसान कह दे नहीं पता। लेकिन अक्सर हम इंसान शर्माते हैं इस बात से कि हम कैसे कह देंगे मुझे नहीं पता। दूसरा कहेगा अच्छा तुमने तो बड़े कोर्स किए हैं, मैं तो, तुम्हें इतना भी नहीं आता, तुम्हें ये भी नहीं पता। तो नहीं पता कोई बात नहीं, कोई इंसान भी तमाम उलूम का माहिर नहीं हो सकता, और तमाम क्या, एक इल्म का भी माहिर नहीं हो सकता। आप देखें, एक बंदा एक चीज के अंदर कोई एक्सपर्टीज हासिल करता है तो दूसरी चीज उसको नहीं आती। कोई घुटनों का डॉक्टर है तो उसको आंखों का नहीं पता, कोई दिमाग का डॉक्टर है तो उसको पेट का नहीं कुछ इल्म है। यानी आप सोच लेना कि एक इल्म लेने लगते हैं उसमें भी पूरी तरह माहिर नहीं होते, और जिस सब्जेक्ट में भी उन्होंने महारत की होती है उसमें भी फुल इल्म नहीं होता। तो इंसान कोई भी ऐसा नहीं है कि वो कहे कि हाँ इसके पास कामिल इल्म मौजूद है, ऐसा कोई इंसान नहीं है। फिर भी हम ये बात कहने में क्यों इतना हिचकिचाते हैं कि मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानती। क्या ये कहने में कभी नहीं शर्माना चाहिए, इंसान ये कह दे बजाय इसके कि वो गलत सलत जवाब दे। कुर्तुबी कहते हैं कि ये हमारे सीखने की बात है कि हमसे जब कोई इल्मी सवाल किया जाए और हमें ना आता हो तो हम कह दें ला आलम, ला अदरी। ला आलम यानी मैं नहीं जानता, मुझे इल्म नहीं, ला अदरी मुझे नहीं पता इसका। जैसे फरिश्तों ने कहा, तो फरिश्तों से इस बात को हमें सीखना चाहिए, और इसमें आजी होती है, इसमें किसी की कोई बेइज्जती नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखें, जब नहीं कोई बात पता होती थी तो आगे से कह देते थे कि अच्छा मैं बता दूंगा। और आज याद है जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंशाल्लाह कहना भूल गए थे, लेकिन ये नहीं करते थे कि खुद ही बस कुछ ना कुछ बना के इधर उधर से उधर कुछ कह दें। ठीक है, तो जो पहली बात उन्होंने कही फरिश्तों ने, सुबहाना का, हजरत उमर ने हजरत अली और अपने पास बैठे हुए दूसरे असहाब से एक मरतबा सवाल किया कि ला इलाहा इल्लल्लाह को तो हम जानते हैं वो क्या है, लेकिन सुबहान अल्लाह क्या कलिमा है? तो हजरत अली ने जवाब दिया, इस कलमे को अल्लाह ताला ने अपने लिए पसंद किया है, वो इससे खुश होता है, और वो इसका कहना उसको महबूब है, यानी उसको बहुत पसंद है कि ये कहा जाए। इसीलिए सुबहान अल्लाह, अल्लाह की जो ये तस्बीह है, ये तो ज़ाहिर है अल्लाह के महबूब कलिमात में से, आपको पता है ना, तो कितना मुख्तसिर से कलिमात है, छोटी सी बात है सुबहान अल्लाह, लेकिन अल्लाह को महबूब है, अल्लाह को पसंद है, और अल्लाह इससे खुश होता है। तो उन्होंने पहले अल्लाह की पाकी बयान की, फिर उसके बाद क्या होता है सुबहाना का कहना, मैंने पहले भी आपको तस्बीह में बताया था, यानी अल्लाह ताला को हर कमजोरी, हर ऐब, हर फ्लॉ से पाक समझना कि उसके अंदर कोई कमी नहीं है, ये हम कह रहे हैं। समझे, समझ लें, जब आप सुबहान अल्लाह कहते हैं तो अल्लाह ताला के अंदर कोई कमजोरी नहीं है, कोई ऐसी चीज जो उसकी शान के खिलाफ हो, जैसे बुढ़ापा है, जैसे कोई कमजोरी है, जैसे बीमारी है, जैसे नींद है, जैसे कोई काम ना कर सकने की हिम्मत वो है, जैसे और कोई भी चीजें लगा दें जो कोई इंसान के साथ लाहक होती हैं, जैसे कोई मजबूरी है, मजबूरी भी एक कमजोरी का नाम है ना, इसी तरह मौत है, ये सब चीजें हैं ना, ये कमजोरियां हैं, ये इंसानों के साथ तो लाहक हो सकती हैं, लेकिन अल्लाह इनसे पाक है। ठीक है, या जल्दबाजी में फैसले कर लेना, या ना समझी के फैसले कर देना, या जज्बात में आके कोई काम कर देना, ये सब कमजोरियां हैं। ठीक है, अल्लाह इनसे पाक है, लेकिन लेकिन अब ये बात सुने, जब कोई इंसान अपने मुंह से ये कहे कि ये फैसला, ये बात, ये हुक्म अल्लाह का, ये तो नहीं समझ आता, ये ऐसे क्यों है, जैसे आपने देखा ना, फरिश्तों ने सवाल किया, मैंने आपको बताया था सवाल किया, लेकिन उसका उनका सवाल क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं था, अल्लाह को कंफ्यूजन दूर करने के लिए, अल्लाह हमें समझ नहीं आ रही इसकी हिकमत के क्या है, एक मैंने आपको बताया था ना ऐसा सवाल होता है, और एक कैसा सवाल होता है जो हमने पीछे देखा, मादा अराद अल्लाह बिहादा मतलब, क्या अल्लाह का इरादा था ऐसी मिसालें देने का, ये कोई मिसालें देने वाली, एक ये भी सवाल होता है, क्या इरादा था अल्लाह का। तो क्रिटिसाइज करने वाली जो बात होती है, जब इंसान ऐसी बातें करता है जिसमें इतराज होते हैं अल्लाह की किसी बात के ऊपर, सवाल नहीं होता, बस इतराजात इतराजात, तो हम असल में क्या कर रहे होते हैं उस वक्त? गौर करें, अल्लाह की तस्बीह के खिलाफ बात कर रहे होते हैं। एक्चुअली हम क्या कह रहे होते हैं, अस्तग़फिरुल्लाह, कि अल्लाह ताला ने तो ये कोई हिकमत से फैसला नहीं किया। फिर अस्तग़फिरुल्लाह, नऊज़ुबिल्लाह, ये वाला जो हुक्म है, यानी अस्तग़फिरुल्लाह, कि अल्लाह को पता ही नहीं था कि 21st सेंचुरी में क्या होना है, या जब हमने ऐसे मुल्कों में रहना तो वहां पे क्या होगा, तो अल्लाह ताला ने तो ऐसे ही बस उठा के कोई हुक्म दे दिया। ये तो तस्बीह के खिलाफ है। हम मुंह से सुबहान अल्लाह की तस्बीहां करते रहे, उसके बाद हम जब एतराज करने लगे तो अल्लाह के हुक्मों पर एतराज करें, तो हम क्या कहना चाहते हैं कि अल्लाह ऐसे ही फैसले कर देता है, बस ऐसे ही कुछ भी कह देता है जो उसका दिल चाहता है, या उसने ऐसे जल्दबाजी में कोई फैसला कर दिया, नाउज़ बिल्ला, या उसने कोई हिकमत के बगैर फैसला ये दे दिया, या उसका इल्म इतना नहीं था, अस्तग़फिरुल्लाह, नाउज़ बिल्ला, कि वो उसको पता होता कि आने वाले वक्तों में क्या जरूरियात होंगी, उसको पता ही नहीं था हमारे जमाने के कैसे जमाने के साथ चलना होता है, तो उसने हमें ये हुक्म दे दिया। क्या ये कहना चाहते हैं? ये तो तस्बीह के मुनाफी है, आप अगेंस्ट कर रहे हैं, इसलिए कि हमें पता ही नहीं ना, हम सुभान अल्लाह कह रहे हैं तो हम कह क्या रहे हैं, हम कह क्या रहे हैं, और फिर हम जब एतराज करते हैं तो हम तो उसी सुभान अल्लाह के खिलाफ कर रहे हैं। तो वो क्या कहते हैं, सुभान अका पाक है तू, यानी अब ये जो तेरे फैसला है, जो भी तूने इस इंसान को बनाने का और उसको खलीफा बनाने का फरमाया है, तेरा ये हुक्म है या तेरी ये बात है, अल्लाह तू तो हर ऐब से पाक है, अल्लाह इसके अंदर जाहिर है कोई बात ही होगी जो हमें नहीं पता है, अल्लाह तू जानता है, और ये जो चीजों का है ये इल्म हमें नहीं है अल्लाह, तो हमें तो जो तूने सिखा दिया, और अल्लाह ने उनको क्या सिखाया था, तस्बीह करनी सिखाई थी, हमें तो यही पता है। तो इंसान को जो शर्फ मिला वो इल्म की वजह से मिला, जो पहला जिसकी जिसके आगे फरिश्ते भी आजिज हो गए, और इन्नक अंतल अलीमुल हकीम, अल्लाह तू तो इल्म वाला और हिकमत वाला है, इल्म तेरे पास है। अब इससे हमें सीख लेना चाहिए कि आगे आगे हम कुरान पाक में जब जाएंगे ना, तो ये हमें बात समझ लेनी चाहिए कि ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना, कोई बात नहीं समझ आ रही तो चाहे 10 साल हमें समझ ना आए, पिछला कोर्स भी कर लिया उससे पिछला, ये बात नहीं मुझे समझ आई तो ना समझ आए कोई बात नहीं, लेकिन यही कहते रहना है मेरे पास कोई इल्म नहीं, मगर अल्लाह ने जितना सिखा दिया मुझे दे दिया, इससे ज्यादा नहीं है मेरे पास कुछ, मुझे नहीं समझ आ रही तो कोई नहीं, अल्लाह ताला की लेकिन क्या बात है, हमेशा क्या कहना है, मैंने आपको पिछली उसमें आयत 26 में भी बताया था, उसको हाईलाइट कर लें, आपने कहना है इन्नहुल हक्कु मिन रब्बिना, ये हक है हमारे रब की तरफ से, जैसे ईमान वालों ने कहा था ना इन्नहुल हक्कु मिन रब्बिहिम, उनके रब की तरफ से उनके पास हक है, तो हमें कहना इन्नहुल हक्कु मिन रब्बिना, ये हक है बेशक हमारे रब की तरफ से, रब्बिना हमारे रब की तरफ से ये हक है। इस बात को सीख लें, और इस बात को सीख लें कि जो है हमें इल्म नहीं है, जो अल्लाह दे देता है वो कितना इल्म है हमारे पास, कितना इल्म है, अभी अपने आप को हम बहुत बड़े इल्म वाले, कुछ लोग तो इतना अपने आप को माहिर समझते हैं कि वो तो कहते हैं हर सब्जेक्ट का इल्म, हमसे तो कुछ पूछो, हमें तो सब आता है, चाहे वो घरदारी है, चाहे वो इंजीनियरिंग है, चाहे मेडिकल का सवाल पूछ लो, चाहे दीन का सवाल पूछो, दीन के तो सबसे आसान सवाल है, वो तो सबको इतने आसान लगते हैं ना, क्यों, इसलिए कि उसमें तो जो दिल में आता है बोलो, चाहे कोई अलिफ बा भी ना पढ़ी हो, ना कुरान सीखा हो, ना हदीस का कोई इल्म हो, बस सुनी सुनाई बातें इधर से चलो, ये करके हम मशवरे भी देते हैं, फतवे भी देते हैं, और इस्लाम को ये कहता है, इस्लाम को ही वो कहता है, ये कहने लगते हैं। तो यहां से पता चला ला इल्मा लाना, हमारा इल्म, हाँ मैं आपसे सवाल पूछती हूँ हमारा इल्म कितना है, तो याद कर लें कि मूसा और खिजर अलैहि सलाम जब जा रहे थे कश्ती में, तो कश्ती पे आके एक चिड़िया बैठी थी जिसकी चोंच में पानी का कतरा था, तो खिजर अलैहि सलाम ने क्या फरमाया था, کہ اے موسیٰ میرا تمہارا، حالانکہ خضر علیہ السلام کا علم تو موسیٰ علیہ السلام سے بھی جدا گانا ایک ڈیفرنٹ ہی علم تھا، میرا تمہارا اور جتنی مخلوق ہے سب کا علم اس پانی کے قطرے کی طرح ہے سمندر کے مقابلے میں، اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں اس ہمارا سب کا علم ایسے ہے جیسے یہ چڑیا کی چونچ میں جو پانی کا ایک ڈراپ ہے، اب اس ڈراپ کو سمجھ لیں کہ سب میں اتنا علم تقسیم ہوا، ایک مثال دی جا رہی ہے نا، اب اس میں ہمارے حصے میں کیا آیا ہوگا، پھر اس کے بعد ہماری باتیں کیسی ہیں، ہر ایک کو جواب دینا، کوئی سوال کر لے صحیح غلطی سے، اگر کسی مجلس میں کوئی ایک بندہ سوال کر لے نا، 10-20 لوگ اس کو جواب دے رہے ہوتے ہیں، سب اپنا اپنا، جیسے آج ہم نے اس کو جواب دیے بغیر بھیجنا نہیں ہے، تو نہیں پتا ہو تو لا علم نہ، ہمیں نہیں پتا، تو ہمارا علم یاد رکھیں، فرشتوں نے وہ جو اپنے آپ کو سمجھ رہے تھے انہوں نے کیا سمجھا تھا، ابھی میں نے اسی لیے وہ حدیث آپ کے سامنے رکھی کہ فرشتوں نے سوچا تھا کہ ہم سے زیادہ تو کوئی افضل ہو نہیں سکتا بزرگی میں، اور اگر بزرگی میں ہوا بھی علم میں تو کوئی نہیں ہم سے آگے بڑھ سکتا، کیونکہ ہم تو یہاں پہ رہتے ہیں، ہم اتنے عرصے سے ہیں، ہم غیب میں کی جو خبریں جو انسان کے پاس تو ہو نہیں سکتی، وہ تو وہاں پہ گھومتے پھرتے ہیں، ان کے سامنے جنت ہے، ان کے سامنے جہنم ہے، آسمانوں کی چیزیں ہیں سب، تو ہم سے زیادہ تھوڑی اس کو علم ہو سکتا، تو یہ انہوں نے اقرار کیا کہ نہیں ہمارے پاس علم نہیں ہے. دوسری یہ ہمیں پتا چلتا ہے ایک اور بات، یہ سب سیکھنے کی باتیں ان آیات سے، تو آپ لکھتے جائیں ان کو، کہ دیکھیں انہوں نے اس بات کو سمجھ لیا کہ جو ہم نے بات کی تھی وہ صحیح نہیں تھی، ہم نے کیا کہا تھا کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اللہ تو ایسا بنا رہا ہے جو اس فساد کرے گا اور خون بہائے گا، تو یہ ہماری بات صحیح نہیں تھی، اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ جو ایزمشنز کر لینا ہے نا، کہ کسی کی ذرا سی چیز دیکھ کے اور ایزیوم کر لینا یہ تو ایسا ہی ہوگا، ساری کی ساری قوم کو کہہ دینا یہ تو ضرور ایسے ہی ہوں گے، یہ تو سارے کے سارے ایسے ہی ہیں، یہ تو چور ہوتے ہیں، یہ تو بے ایمان ہوتے ہیں، یہ تو جھوٹے ہوتے ہیں، یہ تو فلاں، کسی کے بارے میں بھی، یا کسی سارے ہی خاندان، پورے قبیلے، پورے زبان بولنے والے، یا ایک کسی رنگ والے، ان کے بارے میں جنرلائز کر کے کوئی بات نہیں کہنی چاہیے، کیونکہ ہر جگہ میں ایسے بھی ہوں گے تو دوسری طرح کے بھی ہوں گے، فرشتوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ ٹھیک ہے ان میں فساد کرنے والے بھی ہوں گے، خون بہانے والے میں، لیکن ان میں انبیاء بھی ہوں گے، ان میں اولیاء بھی ہوں گے، جیسے ہم نے لاسٹ ٹائم بات کی تھی، یہ کیسے کیسے لوگ ان میں ہوں گے، تو آج کوئی یہ دیکھے تو کہے گا ہاں فرشتوں نے تو بالکل صحیح کہا تھا، دنیا میں تو کتنا خون خرابہ ہو رہا ہے، واقعی ان کی تو بات صحیح تھی، نہیں، اس لیے کہ ہمیں خون خرابے کی ہی باتیں زیادہ پتہ چلتی ہیں، وہی خبریں ہائی لائٹ ہوتی ہیں، وہی خبریں ہر جگہ میڈیا میں پھیلائی جاتی ہیں، ان کو شہرت دی جاتی ہے، لیکن جو بھلائی ہے اکثر وہ چھپی ہی رہ جاتی ہے، بھلائی کی باتوں کو کوئی ہائی لائٹ نہیں کرتا، اس میں نمک مرچ نہیں نہ ہوتا، تو اس میں تو مزہ ہوتا ہے، چٹخارا ہوتا ہے، اے پتہ چلا ایسا ہو گیا، فلانی جگہ میں یہ ہو گیا بچی کے ساتھ، فلانی جگہ میں لڑکے ساتھ ایسا، ان کے اندر ذرا یہ ہوتا ہے، انسان کی ایک طبیعت ہوتی کہ ایسی باتوں کو ذرا ہائی لائٹ کرے، بڑی یعنی دھواں دار بات ہوتی ہے، جبکہ نیکی کی بات نہ پتہ چلتی ہے اور چھپی رہ جاتی ہے، تو دنیا کے اندر ایسے بھی لوگ ہیں، اور خیر بھی ہے تبھی دنیا چل رہی ہے، تو انہوں نے ایک بات کو پکڑ کے اور ساری اس کی باتیں، یہ نہیں دیکھا کہ جو خلیفہ ہوگا اگر اس کے پاس شر کے لیے طاقت ہوگی اور اختیار ہوگا تو خیر کا بھی تو ہوگا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایسے نہیں کرنا چاہیے، پھر ایک اور بات کہ جس بات کی حکمت کا پتہ نہ ہو نا، اب ان کو حکمت نہیں پتہ تھی کہ اللہ کو پتہ ہے نا کہ اس کی کیا حکمت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا انی عالم ما لا تعلم، مجھے پتہ ہے تمہیں نہیں پتہ ہے، تو جس بات کی حکمت کا نہیں پتہ ہو ضرورت نہیں کہ ہم اس پہ اعتراض کرنے لگے، پہلے ہی کچھ بولنا شروع کر دیں، پھر بعد میں ریئلائز ہو کے آؤ ہو یہ تو میں نے صحیح نہیں کہا تھا، تو اگر نہیں پتہ، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بار بار فرماتے ہیں واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تمہیں نہیں پتا، یہاں پہ بھی کہا گیا انی عالم ما لا تعلمون، یہی بات فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے فرمائی، वही बात अल्लाह ताला हमें फरमाते हैं जब कोई हुक्म देते हैं, तो उसके बाद फरमाते हैं वल्लाहु यालम हुवा अंतुम ला तालमून, फिर भी हम इतराज करते हैं। क्या हमें फिर जब कुरान की ये आयात आती हैं तो यकीन नहीं आता? अल्लाह ताला ने हमें कुरान खोलने पे ही फरमा दिया था ला रईबा फी, फिर क्यों शक करते हो? ला रईबा फी जब ये पढ़ लिया और इस पे यकीन कर लिया ना, तो हर आयत पे शरह सदर होना चाहिए, सीना खुल जाना चाहिए इंसान को, उसको आगे बढ़ के लेना चाहिए। नहीं, इसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं, ला रईबा फी। बड़े लोग एतराज करते रहते हैं, ये जलजला क्यों आ गया, फलां को तलाक क्यों हो गई, फलां को औलाद क्यों नहीं आ रही, फलां के साथ ऐसा क्यों हो गया, ये क्यों हमारे साथ हुआ, वो क्यों हमारे साथ हुआ। उस वक्त ये सोचना चाहिए वल्लाहु यालम व अंतुम ला तालमून, ठीक है। और ये भी हमें पता चलता है कि गैब का इल्म फरिश्तों के पास भी नहीं है, गैब का इल्म फरिश्ते भी नहीं जानते, वो भी खुद कह रहे हैं। और हम आज समझते हैं जिन्नात को पता है, फरिश्ते तो जिन्नात से ऊपर रहते हैं ना, जिन्नात की तो वहां तक भी रसाई नहीं जहां तक फरिश्तों की है। जिन्नात तो आसमानी दुनिया से आगे तो जा ही नहीं सकते, तो वहां से भी मार भगाए जाते हैं। और फरिश्ते आगे अल्लाह ताला से करीब हैं, मगर उनके पास भी इल्म नहीं है गैब का। और हम जिन्नों से पूछना चाहते हैं, जिन काबू कर लिया वो बताएगा। तो अलीम यानी सब तरह का इल्म रखने वाला, और हिकमत, हिकमत क्या चीज होती है पहले ये भी देख लेना। हकीम है अल्लाह ताला, तो हिकमत क्या होती है? राइट टाइम पर राइट फैसला करना, विजडम जिसको हम कहते हैं। हिकमत ये नहीं कि बस हम खामोश बन के बैठे रहें, ये बड़ी हिकमत है इसके अंदर। वो खामोशी के अंदर चाहे बेवकूफी हो, लेकिन हिकमत ये होती है जस्ट राइट टाइम पे राइट फैसला। मसलन अल्लाह ताला ने शरीयत दी हमें, नमाज का हुक्म दिया, ये राइट फैसला है। अगर हम अल्लाह ताला को अल हकीम मानते हैं ना, तो हम माने कि ये अल्लाह का सही फैसला है बिल्कुल। या हमारी पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो हम कहें कि ये सब हिकमत पे मबनी है, तब तो हमने अल्लाह को अल हकीम माना। और अगर अल हकीम, हाँ अल्लाह का ये एक नाम है, और इसकी तस्बीहां पढ़ते रहें और कहें हाँ ना इस अल्लाह की सिफत को मानते हैं, लेकिन सब अल्लाह के फैसलों पे एतराज है, तो क्या माना आपने फिर अल्लाह ताला को अल हकीम? आप तो अपने आप को ही हकीम समझते हैं, मैं तो ये समझती थी हिकमत तो इसके अंदर थी, तो होना तो ऐसे चाहिए था, ये क्या हो गया? तो अल हकीम पहले फैसला कर लेना कि आप खुद हकीम है कि अल्लाह ताला है अल हकीम। अगर अल्लाह के हर फैसले पे इतराज आता है, ये मेरी जिंदगी में फलाने के साथ शादी क्यों हो गई, फलां के साथ होनी चाहिए थी, ऐसा क्यों मेरे साथ हुआ, वो क्यों हुआ, नहीं समझे कि अल्लाह अल हक अल अलीम भी है और अल हकीम भी है। मैं देख लें फरिश्ते फिर कैसी हम्बल मखलूक है, सीखना चाहिए ये। और देखें उन्होंने ये नहीं किया कि वो अच्छा हम सोचेंगे हम देखेंगे, फौरन इतराफ किया, फौरन एक्नॉलेज किया कि हमें नहीं पता है, ना शर्माए इस चीज के अंदर, ना झिझके इस चीज में। जब अल्लाह इल्म अना कहना आसान नहीं ना होता, अना आ जाती है ना बीच में, उन्होंने अपनी अना नहीं दिखाई। यस बेसिकली तो यही ये कहना था ना कि अल्लाह हमें कुछ नहीं पता, ये कहना था ना, तो ये आसान होता है कहना। और हमें ये भी पता चलता है कि इल्ला मा अल्लमतना, जो सिखाया तूने, तो इससे पता चलता है कि अल्लाह ही सिखाता है। इसीलिए हमें दुआ अल्लाह से करनी चाहिए कि अल्लाह तू हमें सिखा दे, अल्लाह इल्म दे दे, क्योंकि तू ही इल्म दे सकता है, जो तू सिखाएगा बस वो ही आएगा हमें। سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. تلاوة سنية.
هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم